एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिसने दशकों से लाखों लोगों को प्रेरित किया है, और शायद आज भी उतनी ही या कहूं उससे भी ज्यादा जरूरी है।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं नॉर्मन विंसेंट पील की क्लासिक किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब सकारात्मक सोच की शक्ति। ये किताब आई तो थी 1952 में, लेकिन इसकी बातें आज तक गूंजती हैं।
सही कहा। और आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जहां तनाव, चिंता और कभी कभी खुद पर शक हावी हो जाता है, वहां ये सवाल उठता है कि क्या वाकई हमारी सोच में इतनी ताकत है? क्या वो हमारी जिंदगी बदल सकती है?
यही सवाल, और इसी सवाल का जवाब पील ने देने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि कैसे लाखों लोगों की मदद हुई और क्या उनके सिद्धांत आज भी उतने ही कारगर हैं।
तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे, मतलब सिर्फ किताब के पन्ने नहीं पलटेंगे।
नहीं नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि पील के विचारों का जादू क्या था, उनकी तकनीकें क्या थीं, और क्या वो आज हमारे लिए कोई मायने रखती हैं।
बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं लेखक से। नॉर्मन विंसेंट पील कौन थे ये?
जरूर। देखिए, नॉर्मन विंसेंट पील 1898-1993 वो कोई आम लेखक नहीं थे। उनकी शख्सियत में कह सकते हैं दो दुनियाएं मिलती थीं।
दो दुनिया कैसे?
एक तरफ तो वो न्यूयॉर्क के एक बहुत मशहूर चर्च, मार्बल कलीजिएट चर्च में 50 साल से भी ज्यादा पादरी रहे, लोगों को आध्यात्मिक रास्ता दिखाते थे।
50 साल काफी लंबा समय है।
हाँ, और दूसरी तरफ वो एक तरह से व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक जैसे थे। उनकी असली लैब, आप कह सकते हैं उनका चर्च का दफ्तर था।
अच्छा, लैब।
हाँ, क्योंकि वहीं हजारों लोग अपनी उलझने, अपने डर, अपनी परेशानियां लेकर आते थे, और पील ने दशकों तक उन्हें सुना, उनकी मदद की।
तो उनका ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं आया?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी विशेषज्ञता असल जिंदगी के तजुर्बों से, उन हजारों लोगों की कहानियों से आई थी। इसी अनुभव से उन्होंने वो सिद्धांत बनाए जो हमें इस किताब में मिलते हैं।
और यही शायद उनकी खासियत थी।
बिल्कुल, उन्होंने जो पारंपरिक इस सारी मान्यताएं थीं, उनको उस समय के जो नए मनोवैज्ञानिक विचार उभर रहे थे उनके साथ मिला दिया। वो कोई भारी भरकम सिद्धांत बनाने वाले एकेडमिक नहीं थे, वो बड़े यथार्थवादी थे। उन्होंने अपनी तकनीकों को इंसानी अनुभव की, क्या कहते हैं, कसौटी पर परखा।
अच्छा।
इसी को उन्होंने अप्लाइड क्रिश्चियनिटी या व्यवहारिक ईसाई धर्म कहा, मतलब ऐसा विश्वास जिसे आप अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें।
ये तो बहुत दिलचस्प है। तो अब आते हैं किताब पर। इसका केंद्रीय विचार क्या है, मतलब सार क्या है इसका?
देखिए, किताब का मूल मंत्र बहुत सीधा है लेकिन गहरा है। ये कि हमारी सोच, हमारा नजरिया, हमारा विश्वास, ये सिर्फ हमारे मन की उपज नहीं है।
तो फिर
ये वो औजार हैं जिनसे हम अपनी जिंदगी गढ़ते हैं। अगर हमारी मानसिकता लगातार आशावादी, भरोसेमंद और सकारात्मक है, तो हमें मुश्किलों से लड़ने की, कामयाब होने की और एक खुशहाल जीवन जीने की ताकत मिलती है।
यानी हमारे विचार हमारी हकीकत बन सकते हैं, ये कहना है उनका।
पील का तो यही मानना था, और वो साफ कहते हैं कि ये किताब सिर्फ अच्छा सोचो सब अच्छा होगा टाइप की बात नहीं है।
अच्छा, तो फिर क्या है?
ये एक तरह का मानसिक और आध्यात्मिक री इंजीनियरिंग गाइड है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम नाकामी का डर, चिंता और खुद पर शक की जो गहरी जड़ें हैं, उन्हें काटकर उनकी जगह विश्वास, उम्मीद और हिम्मत की नई शक्तिशाली आदतें कैसे लगा सकते हैं।
तो एक सफर जैसा है। पहले अपनी नेगेटिव सोच को पहचानो, फिर उसे साफ करने के तरीके सीखो, और आखिर में मन को पॉजिटिविटी और विश्वास से भरो।
बिल्कुल सही। ये कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक अभ्यास है। तो चलिए अब इस प्रक्रिया के कुछ अहम पड़ावों, कुछ तकनीकों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। अध्यायों को लाइन से देखने के बजाय कुछ मुख्य विषयों को पकड़ते हैं।
हाँ, ये बढ़िया रहेगा। तो कहाँ से शुरू करें? शायद बुनियाद से, हमारा अंदरूनी संसार, आत्मविश्वास, मन की शांति, ऊर्जा।
हाँ, यहीं से शुरू करते हैं। पील के मुताबिक सब कुछ शुरू होता है खुद पर यकीन से। वो मानते थे कि हीनता ग्रंथि या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब खुद को कम समझना।
हाँ, ये तो बहुत आम है।
बिल्कुल, और पील कहते थे कि ये हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। इसे तोड़ने के लिए क्या करें? अपनी ताकतों को पहचानें, लिस्ट बनाएं, रोज खुद को याद दिलाएं।
और वो सकारात्मक बातें दोहराना, affirmations।
हाँ बिल्कुल, जैसे ईश्वर की मदद से मैं ये कर सकता हूँ। पील कहते थे, ये सिर्फ खुद को दिलासा देना नहीं है, ये अपने अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगाना है।
और इसी आत्मविश्वास से जुड़ा है मन की शांति का विचार। पील कहते हैं कि बेचैन मन सारी शक्ति चूस लेता है।
सही।
जबकि एक शांत मन असल में ताकत का पावर हाउस होता है।
इसके लिए उन्होंने एक तकनीक दी थी, माइंड एम्प्टिंग।
माइंड एम्प्टिंग, मन खाली करना।
हाँ, मतलब दिन में कुछ पल निकालें और जानबूझकर अपने दिमाग से सारी चिंताएं, डर, नेगेटिव ख्यालों को बाहर निकालने की कोशिश करें। सोचें कि वो धुएं की तरह उड़ रहे हैं।
ओके।
और फिर जो खाली जगह बनी, उसे शांति, सुकून और अच्छे विचारों से भरें। ये सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शक्ति वापस पाने के लिए जरूरी है।
और जब मन शांत और आत्मविश्वासी होता है, तो उसका असर हमारी ऊर्जा पर भी पड़ता होगा।
सीधा असर। पील का ये कहना बड़ा दिलचस्प है कि हमारी थकान अक्सर शारीरिक कम और मानसिक या भावनात्मक ज्यादा होती है।
अच्छा, जैसे?
जैसे ऊब, या किसी के लिए मन में गुस्सा या कड़वाहट रखना, या जिंदगी में कोई मकसद ना होना, ये चीजें हमें अंदर से थका देती हैं। पील मानते थे कि हमारी एनर्जी का लेवल हमारी मानसिक और आध्यात्मिक हालत से जुड़ा है। अगर आप किसी काम को जुनून से करते हैं, अगर आपकी जिंदगी का कोई उद्देश्य है, तो आपको थकान कम महसूस होगी। वो इसे प्रार्थना और एक उच्च शक्ति से जुड़ने से भी जोड़ते थे, जिसे वो दिव्य ऊर्जा स्रोत कहते थे।
तो पहला कदम हुआ अपने अंदरूनी जगत को साधना, आत्मविश्वास, शांति, ऊर्जा। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर, विश्वास और उम्मीद को सक्रिय कैसे करें, खासकर जब हालात मुश्किल हों।
बिल्कुल, यहाँ पील प्रार्थना की शक्ति पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन उनका नजरिया थोड़ा थोड़ा अलग था।
अलग कैसे?
वो प्रार्थना को सिर्फ विनती या इच्छा जताना नहीं मानते थे, बल्कि उसे समस्या सुलझाने का एक व्यवहारिक, आप कह सकती हैं लगभग वैज्ञानिक तरीका बताते थे।
वैज्ञानिक तरीका प्रार्थना को, ये बात कुछ?
हाँ, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, प्रेयराइजिंग, मतलब प्रार्थना को एक सक्रिय प्रक्रिया बनाना।
प्रेयराइजिंग ये कैसे करते हैं?
इसमें कुछ कदम हैं। पहला, अपने समस्या को बिल्कुल साफ साफ लिखें या मन में सोचें। दूसरा, उसका सबसे अच्छा जो समाधान हो सकता है, उसकी एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाएं। इसे वो कहते थे पिक्चराइज।
पिक्चराइज, ओके।
और तीसरा, पूरे विश्वास के साथ उसे ईश्वर को सौंप दें और भरोसा रखें कि समाधान मिलेगा, और फिर उस समाधान की दिशा में कदम उठाएं। इसे वो कहते थे एक्चुअलाइज।
एक्चुअलाइज, तो ये सिर्फ बैठकर इंतजार करना नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक्टिव होकर विश्वास करना है।
और इसी विश्वास से जुड़ा है उनका एक और शक्तिशाली विचार, हमेशा सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करना। लेकिन क्या ये थोड़ा भोलापन नहीं लगता? दुनिया तो चुनौतियों से भरी है।
हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। पील का तर्क ये था कि हमारी जो गहरी उम्मीदें होती हैं, वो एक तरह का मानसिक वातावरण बनाती हैं।
मानसिक वातावरण?
हाँ, मतलब अगर हम लगातार नाकामी या मुश्किलों के बारे में सोचेंगे, तो हम अनजाने में वैसी ही परिस्थितियों को अपनी ओर खींच सकते हैं। इसके उलट, अगर हम ईमानदारी से पूरी तैयारी के साथ बेहतरीन नतीजे की उम्मीद करते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है, ये पूरी मेहनत के साथ एक पॉजिटिव उम्मीद रखना है।
और अगर अगर हार मिल जाए तो? असफलता तो होती है।
तब पील कहते थे, मैं हार में विश्वास नहीं करता।
मतलब हार होती ही नहीं?
नहीं, उनका मतलब ये नहीं था, बल्कि ये कि हार तब तक हार नहीं है जब तक आप उसे मान न लें। वो मानते थे कि ईश्वर असफलता का साथ नहीं देते, बल्कि वो हमें उससे उभरने की शक्ति देते हैं।
तो तकनीक क्या है?
तकनीक ये है, जब असफल हो तो निराश होकर बैठने के बजाय ठंडे दिमाग से विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ, उससे सबक सीखें और फिर अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा और विश्वास के साथ अगले मौके की तरफ बढ़ें। हार को एक पड़ाव समझें, मंजिल नहीं।
ठीक है, तो हमने देखा कि अंदरूनी शक्ति कैसे जगाएं और विश्वास उम्मीद को कैसे सक्रिय करें। अब तीसरा हिस्सा आता है, पॉजिटिव आदतें बनाना और नेगेटिविटी से निपटना।
हाँ, और इसमें सबसे पहले है खुशी। पील का मानना था कि खुशी बाहरी चीजों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी हमारे अंदरूनी चुनाव और आदत पर। हमें खुशी की आदत डालनी होगी।
खुशी की आदत, ये कैसे डाली जाती है भला?
जानबूझकर खुश विचार सोचने से, रोज उन चीजों की लिस्ट बनाने से जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, मतलब ग्रेटफुल हैं।
अच्छा, ग्रेटिट्यूड लिस्ट।
हाँ, जो अच्छा है उस पे ध्यान देना, बजाय इसके कि क्या कमी है। दूसरों के लिए प्यार और दया दिखाना। पील के हिसाब से खुशी बाहर से मिलती नहीं, अंदर पैदा की जाती है।
और खुशी का एक बड़ा दुश्मन है गुस्सा, और वो मन में गांठ पाल कर रखना।
बिल्कुल, पील इन्हें भावनात्मक कैंसर कहते थे, जो हमारे मन और शरीर दोनों को जहर से भर देते हैं। वो समझाते थे कि गुस्से पर हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वो अक्सर सीखी हुई आदत होती है, जिसे बदला जा सकता है।
अच्छा, आदत बदली जा सकती है।
हाँ, उन्होंने एक कूलिंग ऑफ प्रक्रिया सुझाई, मतलब जब तेज गुस्सा आए तो तुरंत चुप हो जाएं, कुछ पल के लिए उस स्थिति से हट जाएं, और मन को शांत करने के लिए प्रार्थना करें या कोई शांत करने वाला विचार सोचें। और साथ ही नियमित रूप से मन की सफाई करके पुरानी कड़वाहटों को निकालते रहना जरूरी है। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जरूरी है।
और एक और बड़ी नेगेटिव आदत है चिंता। पील ने उसे तोड़ने का भी तरीका बताया।
हाँ बिल्कुल, वो चिंता को एक विनाशकारी और एकदम व्यर्थ की मानसिक आदत मानते थे। और दिलचस्प बात यह है कि वो चिंता को नकारात्मक विश्वास कहते थे।
नकारात्मक विश्वास मतलब बुरे नतीजे में यकीन करना।
हाँ, और ये भी एक सीखी हुई आदत है। इसे तोड़ने के लिए उन्होंने चार कदमों वाला एक फॉर्मूला दिया।
चार कदम क्या है वो?
पहला, वहीं अपने मन को चिंता के विचारों से खाली करें।
माइंड एम्प्टीइंग।
दूसरा, उस खाली जगह को विश्वास और साहस के विचारों से भरें।
तीसरा,
जब चिंता वाले विचार वापस आएं तो उनका जोरदार खंडन करें, उन्हें चुनौती दें। और चौथा, प्रार्थना के जरिए उस समस्या को ईश्वर पर छोड़ दें, ये विश्वास रखें कि समाधान मिलेगा। ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है।
तो कुल मिला के ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी सोच को बदलने के लिए लगातार काम करने के बारे में है। अगर हम इन सब बातों का सार निकालें तो मुख्य संदेश क्या है इस किताब के?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और सबसे अहम संदेश है, हमारे विचारों में जबरदस्त रचनात्मक शक्ति है। वो सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं, बल्कि हमारी हकीकत को गढ़ने वाले औजार हैं। सोच बदलने से हालात बदल सकते हैं, सेहत, रिश्ते, कामयाबी, सब कुछ।
दूसरा, विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं, एक व्यवहारिक ताकत है। पील ने इसे कैसी विधि, एक मेथड की तरह पेश किया जिससे नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। ये हमारे अंदर छिपी क्षमताओं को जगाता है और हिम्मत देता है। ये धर्म और मनोविज्ञान का एक अनूठा संगम है।
हाँ, तीसरा, मन और शरीर का गहरा कनेक्शन। आज ये बात हमें आम लगती है, पर उस जमाने में ये सोचना कि हमारी सोच हमारी सेहत पर सीधा असर डालती है, ये काफी क्रांतिकारी था।
सही कहा।
चिंता गुस्सा बीमार कर सकते हैं, तो शांति और खुशी सेहतमंद रख सकते हैं।
और चौथा?
चौथा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आत्म सशक्तिकरण। हम शायद बाहरी घटनाओं को हमेशा कंट्रोल न कर सकें, लेकिन हम उन पर अपनी प्रतिक्रिया, अपना रवैया जरूर चुन सकते हैं। असली ताकत इसी चुनाव में है। हम हालात के शिकार नहीं, अपने नजरिए के मालिक हैं।
बिल्कुल।
और आखिर में पांचवां, लगातार अभ्यास का महत्व। पॉजिटिव सोच कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक दिन में घूम जाए। ये एक अनुशासन है, रोज की साधना है। जैसे शरीर के लिए कसरत, वैसे ही मन के लिए ये मानसिक अभ्यास जरूरी है।
और अगर इसे भारत के संदर्भ में देखें तो ये सिद्धांत बहुत काम के हो सकते हैं ना, चाहे वो परीक्षा का तनाव हो, ऑफिस का प्रेशर हो, या रिश्तों की उलझन है।
बिल्कुल, अपनी सोच पर काबू पाना हमें इन सब में ज्यादा शांत और मजबूत बना सकता है।
हाँ, वैसे ये किताब यादगार कथनों और विचारों से भरी पड़ी है। कुछ पंक्तियां तो सीधे दिल पर असर करती हैं।
हाँ, कई हैं।
जिसे वो वाली जो शायद पूरी किताब का निचोड़ है। अपने विचारों को बदलो और तुम अपनी दुनिया बदल दोगे। कितना सीधा पर कितना गहरा।
बिल्कुल, हमारा अंदरूनी मौसम ही बाहरी दुनिया का रंग तय करता है। और आत्मविश्वास पर उनका वो कहना, स्वयं पर विश्वास करो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो।
हाँ,
अपनी शक्तियों में विनम्र लेकिन उचित विश्वास के बिना तुम सफल या खुश नहीं हो सकते। ये न कम आंकने की बात करता है, न ज्यादा घमंड की, एक संतुलित भरोसे की बात।
और खुशी का वो सूत्र भी मुझे बहुत व्यावहारिक लगता है। खुशी का तरीका अपने दिल को नफरत से, अपने मन को चिंता से मुक्त रखो, सादा जीवन जियो, कम अपेक्षा रखो, ज्यादा दो।
आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी
है ना।
और ये वाला तो सोचने पर मजबूर करता है, खाली जेब ने कभी किसी को पीछे नहीं रखा, केवल खाली सिर और खाली दिल ही ऐसा कर सकते हैं।
वाह,
ये बताता है कि हमारी असली दौलत हमारे अंदर है, हमारा ज्ञान, हमारा नजरिया, हमारा हौसला। बाहरी कमी उतनी बड़ी बाधा नहीं जितनी अंदरूनी कमी।
ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल वही है, इनको रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे, कुछ प्रैक्टिकल तरीके?
हाँ, कई तरीके हैं, जैसे अपनी सेहत के लिए रोज सुबह कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहरा सकते हैं, तनाव लगे तो कुछ मिनट निकालकर मन खाली करने की तकनीक अपना सकते हैं।
ठीक है।
किसी बीमारी से जूझ रहे हो तो स्वस्थ होने की कल्पना मतलब विजुअलाइजेशन कर सकते हैं।
और कामकाज या पढ़ाई में?
इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन से पहले अपनी काबिलियत पर फोकस करें, सफलता की तस्वीर मन में बनाएं। कोई मुश्किल प्रोजेक्ट आए तो घबराने की बजाय उसे चुनौती समझें और विश्वास रखें कि रास्ता निकलेगा। पील ने एक सेल्स पर्सन का जिक्र किया था जो ना सुनने से डरता था, पर इन तकनीकों से कामयाब हुआ। छात्र परीक्षा की चिंता कम करने और फोकस बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
और रिश्तों में?
इसी से मनमुटाव हो तो पील की कूलिंग ऑफ तकनीक अपनाएं, गुस्से को शांत करें, माफ करने का अभ्यास करें अपने मन की शांति के लिए, दूसरों में अच्छाई देखने की कोशिश करें।
और आम जिंदगी के तनाव से निपटने के लिए?
वो चिंता की आदत तोड़ने वाला चार कदमों वाला फॉर्मूला आजमा सकते हैं। रोज रात को सोने से पहले दिन की अच्छी बातों को याद करके शुक्रगुजार हो सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो है सशक्तिकरण का एहसास। ये जानना कि हम अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर हैं, सिर्फ यात्री नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, अपनी सोच और अपने नजरिए को चुनने की आज़ादी हमारे पास हमेशा रहती है, और यही चुनाव हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है।
और मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात ये रही कि ये किताब किसी भोलेपन या आंख मूंद कर सब अच्छा मानने की बात नहीं करती, बल्कि ये आध्यात्मिक ज्ञान और मनोवैज्ञानिक समझ पर आधारित एक बहुत ही व्यावहारिक जीवन पद्धति सिखाती है। ये सिर्फ क्या सोचे नहीं बताती, बल्कि कैसे सोचे इसका एक पूरा नक्शा देती है। श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। आज अभी अपनी सोच के किसी एक पुराने नकारात्मक पैटर्न को पहचानिए। क्या आप उसे बदलने का एक छोटा सा कदम उठाने का चुनाव कर सकते हैं? बस एक छोटा सा कदम।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।